एकात्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद कुछ लोगों की रातों की नींद थोड़ी उड़ा दे।
हाँ, पर एक बहुत जरूरी नजरिए से।
बिल्कुल।
ये उन किताबों में से है जिसे पढ़ने के बाद आप दुनिया को मतलब पहले की तरह नहीं देख पाते। किताब का नाम है ग्लोबल कैटास्ट्रोफीज
और इसके लेखक हैं बिल मैकगायर।
हाँ, और इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि हम इंसान, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी धरती बहुत शांत है, स्थिर है, एक सुरक्षित जगह है, पर क्या सच में ऐसा है?
यही सवाल इस किताब की नींव है। लेखक हमें उन विशाल प्राकृतिक खतरों की एक समझिए टूर पर ले जाते हैं जो हजारों लाखों साल में एक बार होते हैं,
लेकिन जब होते हैं
तो पूरी कहानी बदल सकते हैं। ये डरावना लग सकता है, पर असल में ये हकीकत को समझने और तैयारी करने के बारे में है।
तो चलिए इस फैसिनेटिंग और जरूरी सब्जेक्ट में और गहराई से उतरते हैं।
बिल्कुल।
तो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये बिल मैकगायर हैं कौन। मेरा मतलब है, आपदाओं पर तो बहुत लोग लिखते हैं, इनकी बात में ऐसा क्या खास है?
बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बिल मैकगायर कोई पत्रकार या सिर्फ लेखक नहीं है।
अच्छा।
वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जियोफिजिकल और क्लाइमेट हैजर्ड के प्रोफेसर हैं। वो एक ज्वालामुखी विशेषज्ञ हैं, मतलब एक वॉल्केनोलॉजिस्ट हैं। उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं ताकतों को समझने में गुजरी है।
अच्छा, तो वो एक इनसाइडर है।
जी।
वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बता रहे बल्कि असल डेटा और अपने अनुभव से बात कर रहे हैं।
बिल्कुल। और ये बात किताब को और ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। वो सिर्फ ज्वालामुखियों के एक्सपर्ट नहीं है, भूकंप, सुनामी, जलवायु परिवर्तन, इन सब पर उन्हें एक बड़ी अथॉरिटी माना जाता है।
और उनकी लिखने की शैली कैसी है?
उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बहुत मुश्किल साइंटिफिक आइडियाज को भी आम लोगों के लिए बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। उनका मकसद सनसनी फैलाना नहीं है,
बल्कि इस सबूतों के आधार पर हमें असलियत दिखाना है।
एग्जैक्टली।
समझ गई। तो वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अलार्म बजा रहे हैं, लेकिन चीख चिल्लाकर नहीं बल्कि कामली फैक्ट्स के साथ।
हाँ।
तो फिर इस किताब का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? ये असल में कहना क्या चाहती है?
किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि हम सब एक तरह के शांति के भ्रम में जी रहे हैं।
शांति का भ्रम?
हाँ, वो इसे ट्रैंक्विलिटी बायस कहते हैं।
ट्रैंक्विलिटी बायस, ये सुनने में दिलचस्प है, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि क्योंकि पिछले कुछ हजार सालों से, मतलब जब से इंसानी सभ्यता ने तरक्की की है, धरती पर कोई बहुत बड़ी दुनिया को खत्म कर देने वाली तबाही नहीं हुई,
तो हमें लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही शांत रहेगी।
हाँ, हम भूल जाते हैं कि भूवैज्ञानिक समय यानी जियोलॉजिकल टाइम में हम बस एक पल के लिए यहाँ हैं।
और ये किताब इसी भ्रम को तोड़ती है। एक तरह से ये हमें याद दिलाती है कि हम एक बहुत ही एक्टिव और तभी कभी हिंसक ग्रह पर रह रहे हैं।
सही कहा। ये किताब हमें उन ताकतों का एक टूर कराती है जो दुनिया का नक्शा बदल सकती हैं। अंतरिक्ष से आने वाले एस्टेरॉयड से
हमारे पैरों के नीचे धधकते सुपर वॉल्केनो तक।
हाँ, और फिर ये भूकंप, सुनामी और अचानक होने वाले जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों की भी बात करती है। लेकिन ये सिर्फ खतरों की लिस्ट नहीं है, ये उनके पीछे का विज्ञान समझाती है।
तो चलिए एक एक करके इन खतरों की बात करते हैं। मुझे लगता है शुरुआत ऊपर से करनी चाहिए, यानी अंतरिक्ष से।
एस्टेरॉयड और धूमकेतु।
हाँ, ये तो हॉलीवुड फिल्मों का क्लासिक टॉपिक है।
और मैकगायर कहते हैं कि ये सिर्फ फिल्म ही नहीं है, वो इसे कॉस्मिक शूटिंग गैलरी कहते हैं।
कॉस्मिक शूटिंग गैलरी?
हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ हम लगातार निशाने पर हैं। उनका तर्क है कि एक बड़ा इम्पैक्ट होना अगर का नहीं कब का सवाल है।
आप उस डायनासोर वाले इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना?
हाँ,
चिक्शलूब इम्पैक्ट।
हाँ, वही 6.5 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉइड आज के मैक्सिको में टकराया था।
10 किलोमीटर?
हाँ, उससे इतनी ऊर्जा निकली जितनी करोड़ों परमाणु बमों से निकलती, पर असली तबाही टक्कर से नहीं, उसके बाद के असर से हुई,
जिसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं।
बिल्कुल। टक्कर से इतनी धूल और सल्फेट हवा में फैल गया कि उसने महीनों तक सूरज की रोशनी को रोक दिया। धरती ठंडी हो गई, पेड़ पौधे मर गए
और पूरी फूड चेन ढह गई,
और डायनासोर इसी वजह से खत्म हुए।
ये सोचना भी अजीब लगता है, मतलब हमारे ग्रह का पूरा इतिहास एक चट्टान के टकराने से बदल गया।
हाँ, सब कुछ कितना नाजुक है।
पर ये तो करोड़ों साल पुरानी बात है, क्या हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है?
हाँ, हुआ है। 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का में एक छोटा एस्ट्रॉइड हवा में ही फट गया था।
जमीन से टकराया भी नहीं,
लेकिन उसके शॉक वेव ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल को सपाट कर दिया था। ये एक बड़े शहर को तबाह करने के लिए काफी था।
ये तो एक वेकअप कॉल जैसा था।
बिल्कुल।
तो ठीक है, अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर एक बड़ा खतरा है, लेकिन शायद हमें ऊपर देखने से ज्यादा अपने पैरों के नीचे देखने की जरूरत है।
किताब में सुपर वॉल्केनो का जिक्र भी है।
सही पकड़ा। सुपर वॉल्केनो सामान्य ज्वालामुखियों के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वो फटते नहीं, वो विस्फोट करते हैं।
और एक सुपर विस्फोट भी ज्वालामुखी सर्दी ला सकता है।
हाँ, जो दुनिया भर में खेती को तबाह कर सकता है और अकाल ला सकता है।
जैसे अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क।
हाँ, मैंने सुना है कि वो पूरा पार्क ही एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है।
हाँ, येलोस्टोन एक कालडेरा है, मतलब एक पुराने सुपर विस्फोट का बचा हुआ गड्ढा, और उसके नीचे आज भी एक बहुत बड़ा मैग्मा चेम्बर है।
और इतिहास में?
इतिहास में इससे भी बड़े विस्फोट हुए हैं। करीब 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में टोबा नाम का सुपर वॉल्केनो फटा था।
74,000 साल पहले? उस वक्त तो हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे।
बिल्कुल। और माना जाता है कि इस विस्फोट ने पूरी दुनिया में ऐसा असर डाला कि इंसानों की आबादी घटकर सिर्फ कुछ हजार रह गई।
सिर्फ कुछ हजार?
हाँ, इसे जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं।
जेनेटिक बॉटलनेक, ये क्या होता है?
सोचिए, जैसे एक बोतल से बहुत कम कंचे ही बाहर निकल पाते हैं, वैसे ही हमारी पूरी प्रजाति उस दौर से बहुत कम आनुवांशिक विविधता के साथ बाहर निकली।
अच्छा।
ऐसा माना जाता है कि आज दुनिया के सभी इंसानों में जेनेटिक विविधता इतनी कम इसीलिए है क्योंकि हम सब उन कुछ हजार बचे हुए लोगों के वंशज हैं।
वाह, मतलब हमारे डीएनए में भी उस तबाही की कहानी छिपी हुई है।
हाँ, एक ज्वालामुखी ने हमें लगभग खत्म ही कर दिया था।
कमाल की बात है। अंतरिक्ष हो गया, जमीन के नीचे का लावा हो गया, अब उन खतरों की बात करते जो हमें ज्यादा परिचित लगते हैं, भूकंप और सुनामी।
हाँ, लेकिन किताब छोटे मोटे भूकंपों की नहीं, मेगा थ्रस्ट भूकंपों की बात करती है।
मेगा थ्रस्ट, ये सुनने में ही काफी बड़ा लगता है।
ये सामान्य भूकंप से बहुत अलग है। सोचिए कि दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नीचे फंसी हुई हैं और सदियों से तनाव बना रही हैं।
ठीक है।
जब वो तनाव एक साथ छूटता है तो नतीजा 9.0 की तीव्रता से भी ज्यादा का भूकंप होता है।
और इसका कोई ताजा उदाहरण है जहां वैज्ञानिक ऐसा होने की उम्मीद कर रहे हो?
हाँ, उत्तरी अमेरिका का कैस्केडिया सबडक्शन जोन, ये अमेरिका और कैनेडा के पश्चिमी तट के पास है।
वहां क्या हो रहा है?
वहां पिछले 500 सालों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तनाव जमा हो चुका है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां एक बहुत बड़े भूकंप का आना तय है, बस ये नहीं पता कब।
और हम 2004 और 2011 की सुनामी में देख ही चुके हैं कि ये कितने विनाशकारी हो सकते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन किताब में एक और तरह की सुनामी का जिक्र है जो भूकंप से भी नहीं आती, मेगा सुनामी।
हाँ, और ये शायद सबसे कम समझे गए खतरों में से एक है। ये ज्वालामुखी द्वीपों के ढहने से पैदा होती है।
मतलब एक द्वीप का हिस्सा टूटकर?
हाँ, जैसे अटलांटिक महासागर में कैनरी द्वीप समूह का ला पाल्मा द्वीप, वहाँ कुम्रे वियेजा नाम का एक ज्वालामुखी है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अस्थिर है।
एक मिनट, आप कह रहे हैं कि एक द्वीप का हिस्सा टूटने से अटलांटिक महासागर के पार लहरें उठ सकती हैं? ये तो अविश्वसनीय लगता है।
कंप्यूटर मॉडल तो यही दिखाते हैं। अगर वो हिस्सा एक साथ टूटकर समुद्र में गिरता है तो वो अटलांटिक महासागर के आर पार दर्जनों मीटर ऊंची लहरें भेज सकता है
जो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के तटों से टकराएंगी।
हाँ, इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर हुआ तो तबाही कल्पना से परे होगी।
और आखिर में जलवायु का खतरा। लेकिन जैसा आपने कहा, ये उस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नहीं है जिसके बारे में हम हर रोज सुनते हैं।
नहीं, ये अचानक होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में है, जहां सिस्टम एक टिपिंग पॉइंट पार कर जाता है और कुछ ही दशकों में या शायद सालों में दुनिया एक नई जलवायु अवस्था में पहुंच जाती है।
क्या ऐसा पहले कभी हुआ है?
हाँ, इसका ऐतिहासिक सबूत है, यंगर ड्रायस घटना, जो करीब 12,900 साल पहले हुई थी। तब धरती गर्म हो रही थी, लेकिन फिर अचानक उत्तरी गोलार्ध का तापमान वापस हिमयुग जितना ठंडा हो गया।
पर ऐसा हुआ क्यों?
माना जाता है कि अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा करंट सिस्टम है, ओशन कन्वेयर बेल्ट। उस वक्त पिघलते ग्लेशियरों से भारी मात्रा में ताजा पानी अटलांटिक में पहुंचा और उसने उस कन्वेयर बेल्ट को बंद कर दिया।
और चिंता की बात यह है कि आज ग्रीनलैंड की पिघलती बर्फ फिर से वही कर सकती है।
बिल्कुल।
इन सभी खतरों के बारे में सुनकर दिमाग सुन हो जाता है। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो किताब से कुछ बड़े थीम्स निकल कर आते हैं।
हाँ।
पहला तो मेरे लिए यही है कि हम एक बहुत ही नाजुक और अस्थायी शांति काल में जी रहे हैं।
बिल्कुल, ग्रह उतना बोरिंग और सुरक्षित नहीं है जितना हम समझते हैं। दूसरा बड़ा संदेश है लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट इवेंट्स को गंभीरता से लेना।
मतलब वो घटनाएं जो होती तो बहुत कम है पर उनका असर बहुत ज्यादा होता है।
हाँ, हमारा दिमाग ऐसी चीजों के लिए योजना बनाने में अच्छा नहीं है। हम कल की सोचते हैं, 100 साल बाद की नहीं।
और तीसरा संदेश जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है हमारे आधुनिक समाज की नाजुकता। हमारी दुनिया कितनी जुड़ी हुई है।
ग्लोबल सप्लाई चेन, इंटरनेट, वित्तीय बाजार,
ये हमारी ताकत है लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। एक जगह की आपदा पूरी दुनिया में विफलताओं की एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है।
सही कहा। और आखिर में सबसे अहम संदेश जो थोड़ी उम्मीद भी देता है वो ये है कि इन सबसे हमारा एकमात्र सच्चा बचाव विज्ञान है।
जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, क्लाइमेट मॉडलिंग,
हाँ यही वो टूल्स हैं जिनसे हम इन खतरों को समझ सकते हैं, उनकी निगरानी कर सकते हैं और शायद उनसे बचने की तैयारी भी कर सकते हैं।
हमारे पास टॉर्च है, बस उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है।
बिल्कुल।
किताब में कुछ विचार बहुत दमदार तरीके से रखे गए हैं। एक बात जो मेरे दिमाग में अटक गई वो ये है कि हमारी सभ्यता भूवैज्ञानिक शांति के एक दुर्लभ और अस्थायी उपहार के कारण मौजूद है।
और चट्टानों और बर्फ में लिखा इतिहास एक चेतावनी है कि स्थिरता हमेशा नहीं रहेगी।
एक और बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया रिस्क असेसमेंट को लेकर है। लेखक कहते हैं हमें असंभव को असंभाव्य के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।
इसका मतलब है कि अगर किसी घटना के होने की संभावना सिर्फ 0.01% है लेकिन वो पूरी सभ्यता को खत्म कर सकती है
तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसकी बहुत छोटी वार्षिक संभावना भी हमारी प्रजाति के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन जाती है।
सही।
और एक विचार जो उम्मीद जगाता है वो ये है कि पृथ्वी के इतिहास में पहली बार कोई प्रजाति अपने अस्तित्व के खतरों से अवगत हुई है।
हम चेतावनियों को पढ़ने वाले पहले हैं और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता रखने वाले भी पहले। सवाल ये है कि क्या हम ऐसा करने की बुद्धिमत्ता दिखाएंगे?
ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? क्या हमें डर कर जीना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैकगायर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, कंस्ट्रक्टिव पेसिमिज्म,
रचनात्मक निराशावाद।
ये तो सुनने में विरोधाभासी लगता है।
इसका मतलब है खतरों की हकीकत को स्वीकार करना, उनसे मुंह नहीं मोड़ना लेकिन फिर उस जानकारी का इस्तेमाल तैयारी करने के लिए करना।
निराश होकर बैठना नहीं बल्कि एक्शन लेना।
हाँ, एक बेहतर ज्यादा मजबूत दुनिया बनाने के लिए।
ये तो व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू होता है और सरकारों की नीतियों पर भी। जैसे हम ऐसी सरकारों का समर्थन कर सकते हैं जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स में ज्यादा पैसा लगाएं।
बिल्कुल। या फिर खतरनाक इलाकों में मजबूत बिल्डिंग कोड बनाने पर जोर दें और सबसे जरूरी वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दें क्योंकि एक एस्टेरॉयड या सुपर वोल्केनो किसी देश की सीमा का सम्मान नहीं करेगा। ये बात मुझे एक और जरूरी चीज सिखाती है। हम हमेशा कुशलता, एफिशिएंसी के पीछे भागते हैं लेकिन ये किताब बताती है कि हमें कुशलता के साथ साथ लचीलापन यानी रेजिलियंस भी बनाना होगा।
चाहे वो हमारी फूड सप्लाई चेन हो या पावर ग्रिड, हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो बड़े झटकों को झेल सकें।
तो इस पूरी चर्चा से जो एक बात मेरे मन में रह गई है वो है डीप टाइम का विचार। हमें सिर्फ कुछ सालों या दशकों के पैमाने पर नहीं बल्कि भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर सोचना सीखना होगा। हजारों लाखों सालों के नजरिए से देखें तो हमारी मौजूदा स्थिरता एक भ्रम है।
और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारी भेद्यता, हमारी वनरेबिलिटी काफी हद तक एक विकल्प है। खतरे प्राकृतिक हैं, वो हमेशा रहेंगे।
हाँ।
लेकिन हम उनसे कितने असुरक्षित हैं ये हमारे फैसलों पर निर्भर करता है।
हाँ, हम एक ज्यादा लचीला और तैयार समाज बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। तो जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम पहली प्रजाति हैं जो इन खतरों को समझ सकती है। क्या ये ज्ञान हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के सभी जीवन के लिए इस ग्रह के दीर्घकालिक संरक्षक बनने की जिम्मेदारी देता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।